आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। अपन पिछले दिनों से लगातार अनुप्रेक्षा के बारे में जान रहे हैं। अनुप्रेक्षा के बारे में पिछले दिनों से लगातार विचार कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा अपने आप में विचार की एक प्रक्रिया है और उस अनुप्रेक्षा के बारे में हम विचार कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था कि हम सब लोग जान लेने के बाद भी अपने जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं तो एक ही बात समझ में आई कि बहुत सारा जान लेना कार्यकारी नहीं है। उस जानकारी को अपनी जब तक हम साधना के द्वारा अनुभूति नहीं बनाते हैं तब तक वो जानकारी हमें लाभप्रद नहीं होती है। तो हम जो भी जानकारी इन दिनों प्राप्त करेंगे किसी भी चीज के बारे में, अपन अनुप्रेक्षा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये जानकारी हम और आपके लिए जानकारी है लेकिन ये किसी न किसी का अनुभव है। और जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है वो व्यक्ति जैसे ही कहना शुरू करता है तो वो सब फिर ज्ञान हो जाता है। अनुभव को जब कहा जाता है तब वो ज्ञान हो जाता है और ज्ञान को जब अपने जीवन में उतार लिया जाता है तो वही ज्ञान फिर से अनुभव हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि अपन रोज उस पर सुनते हैं, टेलीविजन पर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सारी पहले एनर्जी को, साउंड वेव्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में और फिर इलेक्ट्रिसिटी से फिर कन्वर्ट कर देते हैं साउंड में। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया है कि किसी ने अपने अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करके हमें दिया है। अब हमारा फर्ज क्या है, हम उस ज्ञान को अपने अनुभव में, तब जो है वास्तव में हमारी जानकारी हमारे लिए उपयोगी है। बार बार किसी चीज के बारे में विचार करने से हमने एक चीज जानी, खुद भी अपने जीवन में हम अनुभव करें कि बार बार किसी अच्छी चीज के बारे में विचार करिए तो मन कितना अच्छा होने लगता है, फिर हमारे कार्य में, हमारे आचरण में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अनुप्रेक्षा का बहुत सीधा सा लाभ हमारे जीवन में है कि किसी अच्छाई का, किसी सच्चाई का, दोनों चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो जो अच्छा है वो सब सच हो, लेकिन जो जो सच है वो सब अच्छा होता है। इसलिए दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ कि किसी अच्छाई को या कि किसी सच्चाई को, इन दोनों को यदि हम बार बार विचार करते हैं तब आप खुद महसूस करेंगे कि टेम्परिंग होना शुरू हो गई और हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो जीवन को रूपांतरित करने के लिए ये विचार की शक्ति जो अनुप्रेक्षा देती है वो बहुत आवश्यक है। हमें शरण चाहिए। हम क्या विचार करेंगे, हम अशरण का विचार करें ताकि हम शरण पा सकें। हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए हमें जहाँ हम जीते हैं उस चीज को, उस चीज की तासीर को बताया जाए। किसी व्यक्ति को कमल पाना है तो पहले उसे टीचर से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उसे कीचड़ के बारे में राय व्यक्ति जानना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कीचड़ को कमल मान दे और उसी में संतुष्ट हो जाए। किसी को आत्मा पाना है तो जो जो आत्मा से पृथक है उन सब के बारे में विचार कर लेना पड़ेगा। एक नेति नेति करके पूरा दर्शन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर क्या है, कहते बस जहां तुम ये कह सको कि ये नहीं है बस वही तुम हो। इसलिए कहते जाओ लास्ट मोमेंट तक कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, फिर है क्या, जो है वो वहीं पर है, उसे कहीं अलग से पृथक लाने की आवश्यकता नहीं है। असल में जो अतिरिक्त इकट्ठा हो गया है उसे हटाने की प्रक्रिया अनुपेक्षा, डिस यूनियन की प्रक्रिया। जो कुछ हमसे पृथक है लेकिन वो हमारे साथ एक नेक जैसा हो गया है, एक ही भावम गति व मया या स्वयं कर्म बंधो, वादिराज महाराज कहते हैं कि मानो मेरे साथ एक नेक हो गया है जो कर्म का बंधन, मुझे उसे डिसयूनियन, उसे मुझे हटाना है, उसे पृथक करना। जब दो चीजें, ऐसा मन में विचार आ सकता है कि जब दो चीजें अलग अलग ही हैं तो फिर उनको अलग क्या करना, नहीं, लेकिन दो चीजें अलग अलग होते हुए भी एक नेक ऐसे हो गई हैं कि वे पृथक होते भी पृथक नहीं मालूम पड़ती। इसलिए अनुप्रेक्षा हमें एक सलाहकार की तरह, जो मैंने आपसे कहा था, वो सलाह देती है कि जब दो चीजें जुदी जुदी हैं तब उनको क्यों नहीं अलग अलग कर देते हो, उन दोनों के एक होने का कारण क्या है, ये जानो कि उनके एक होने का कारण क्या है और वे जब दोनों अलग अलग हैं तो उनकी तासीर क्या है, ताकि तुम्हें जो पाना है उसको पा सको। आज अपन जबकि आश्रय अनुपेक्षा के बारे में विचार करेंगे तो हमें आज ये जानना पड़ेगा कि क्या फॉरेन मटेरियल है जो हमारे भीतर इन्फ्लक्स होता है प्रतिक्षण, और क्या हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है। ये डिसयूनियन की प्रोसेस जो अनुपेक्षा देती है, बार बार विचार करना पड़ेगा जो अपना नहीं है और जो अपना है उन दोनों का। जैसे हमने अनित्य का विचार किया क्योंकि हमें नित्य पाना था, हमने अशरण का विचार किया क्योंकि हमें शरण पानी थी, हमने संसार का विचार किया क्योंकि हमें मुक्ति पाना है, हमने परधि का विचार किया क्योंकि हमें केंद्र पाना है। संसार परधि है जिस पर हम चक्कर लगाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उसका कोई केंद्र है क्या? उसका केंद्र है जिस पर स्थिर रहा जा सकता है। संसार के परिभ्रमण से बचने के लिए, स्थिर होने के लिए आवश्यक है कि हम परिभ्रमण को जाने, तभी तो हम स्थिर हो पाएंगे। संसार अनुपेक्षा करते करते एक स्थिरता आनी चाहिए कि कितना भटकेंगे, कितना चलेंगे, कहां कहां जाएंगे। जितने विचार करता हूं उतना ज्यादा मैं संसार में भटकता हूं, मैं रुक जाऊं, मैं ठहर जाऊं। ठहरने के लिए आवश्यक है कि मैं भटकने की प्रक्रिया को जान लूं। संसार, इसलिए संसार भावना, निरंतर संसार भावना का चिंतन, कोई भी चीज घटित हो आपके मन में फौरन आना चाहिए कि देखो यही तो संसार है। ऐसा नहीं कि यहीं पर बैठ करके और बढ़िया से चहु गति जुग जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब कोई महाराज जी मिल जाए, सुन से चारों गति पूछ लो और पांच परिवर्तन को स्वरूप पूछ लो और बैठो घरे कि होगा ज्ञानवान। सो अकेले चार गतियों के स्वरूप और पांच परिवर्तन के स्वरूप अकेले से थोड़ी ना हमारे लिए संसार की भावना हो जाएगी। संसार भावना निरंतर कोई भी कार्य करते हैं उसी समय ये मेरा संसार बढ़ाने का कार्य है, इससे मेरा संसार बढ़ेगा। और बाहर जैसे ही संसार में बहुत सारी चीजें देखते, किसी को मरते देखते, किसी को उत्पन्न होते देखते, तो हर्ष विषाद तो बाद में, पहले ये कि ये देखो जन्म, ये संसार की शुरुआत, ये मरण किसी और जगह जन्म की शुरुआत, ये फिर संसार का गमन, ये संसार ऐसा ही चलता रहे। ये अनुप्रेक्षा, ये सजगता है। ऐसी जब हमारे भीतर सजगता आ जाती, अनुप्रेक्षा ऐसी सजगता देती है कि वो निरंतर हमें विचारवान बना देती, हम वस्तु की वास्तविकता का निरंतर विचार करना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे ये प्रोसीजर चलेगा, ऐसा नहीं कि अकेले क्षण भर के लिए विचार कर लिए। तो हमने अपने केंद्र को पाने के लिए उस परधि पर परिभ्रमण को भी समझा है, संसार को। फिर हमने अपनी निजता को पाने के लिए, अपनी स्वाधीनता को पाने के लिए, मैं अकेला हूं लेकिन असहाय नहीं हूं। एकत्व भावना जो है मुझे ये इशारा करती है कि मैं अकेला हूं भले ही, लेकिन मैं असहाय नहीं हूं। एक अकेला हो जाना असहाय हो जाना माना जाता संसार में, इसलिए आदमी असहाय ना हो इसलिए सहारा खोजता है, साथी खोजता है। नहीं, लेकिन मैं एक होकर के भी बहुत समृद्ध हूं, मैं बहुत अनंत शक्ति वाला हूं। एकत्व की भावना मेरे भीतर की स्वाधीनता को प्रकट करती है कि मैं स्वाधीनता पूर्वक अपने जीवन का यापन कर सकता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं अपने सारे सुख दुख के लिए, और उसी जगह अन्यत्व बैठा हुआ है। एकत्व और अन्यत्व में पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है सिर्फ। एक पॉजिटिव अप्रोच है कि मैं एक अकेला हूं, अपने को सबसे पृथक जानना एकत्व, सबको अपने से पृथक जानना अन्यत्व। सबसे मैं पृथक हूं और मुझसे सब पृथक हैं, बस इतना ही है। एक में मुझे अपने पुरुषार्थ की दृष्टि मिलती है जो एकत्व भावना है, जो मुझे स्वाधीनता देती है। निरंतर मैं इस तरह का विचार करता हूं कि जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो फिर मैं क्यों नहीं अपने पुरुषार्थ को आसानी से करता हूं, मैं क्यों दूसरे पर डिपेंड हो जाता हूं, क्या आवश्यकता है परावलंबन की। मैं स्वाधीन हूं क्योंकि सब सुख दुख मुझे ही अकेले भोगना पड़ेगा, कोई पार्टिसिपेट थोड़ी कर लेगा। और अन्यत्व, जब इतना सारा जो मैंने जोड़ के रखा है वो मेरे से पृथक है, तब फिर मैं इसके बीच कैसे रहूं। ये चीज मुझे अन्यत्व भावना सिखाती। अन्यत्व का बोध जिसे है वो सारे संबंधों के बीच तटस्थ होकर के जीता है। सारे संबंध उसके हैं लेकिन तटस्थता सीख लेता है वो, क्योंकि वो जानता है कि ये सब पृथक हैं। अन्यत्व भावना के माने ये नहीं है कि सब पराए हैं, सो हो जाओ घर से बाहर, हम अकेले हैं हम घरे, ऐसा अर्थ नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नहीं, जहां हम ये देख रहे हैं कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, वहीं पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं सबसे पृथक हूं और सब मुझसे पृथक हैं। क्योंकि सबको अपने सुख दुख का फल भोगना पड़ता, मुझे अपने सुख दुख का फल भोगना पड़ता, इसलिए मैं अलग हो गया और सब अलग हो गए। इसके बावजूद भी सब सबके हैं और सब अपने अपने हैं। इस तरह की जो भावना हमारे भीतर आनी चाहिए वो एकत्व और अन्यत्व भावना के बोध से ही आती है। असुचि, ठीक है, शरीर असुचिमय है, क्या करूं, इसको उठा करके फेंक दूं, इसकी गंदगी पर नाक मुंह सिकोड़ूं? अगर ऐसा कोई सोचता हो कि इसकी गंदगी पर मुझे नाक मुंह सिकोड़नी है, तो फिर वो अभी अनुप्रेक्षा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अभी अशुचि के बारे में जान रहा है। अशुचि अनुप्रेक्षा तो यही है कि उसमें से शुचिता का क्या उपाय है। वो निरंतर इस बात के लिए विचार कर रहा है कि कैसे पवित्रता आएगी। ठीक है ये अपवित्र है, ठीक है कीचड़ में खड़ा हूं, लेकिन कमल वो जो दिख रहा है उधर, कमल वो मुझे पाना है, इसलिए इस कीचड़ को मैं पार करूंगा, मैं इस अपवित्रता में अटक ना जाऊं, वरना मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और इसी अपवित्रता में अटक जाने की वजह से मेरी पवित्रता की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है, जबकि मैं पवित्र हूं, अपने स्वभाव की अपेक्षा से मैं पवित्र हूं बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीजें जो अपवित्रताएं मेरे साथ जुड़ी हैं, वे मेरी चेतना को अपवित्र करती हैं, वे मेरी भावनाओं को, मन वचन काय सबको अपवित्र करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मैं अपने मन वचन काय सबको अपवित्र होने से बचाऊं, अपवित्रताओं को समझूं। और अगर मैं मन वचन काय को संभाल लेता हूं, तब तो फिर आगे वाली भावना बहुत आसान हो जाती है। मन वचन काय के वजह से ही जो जो गन की चपलाई ताते वह आश्रो पाई। फौरन ध्यान में आ जाता है कि जितनी मन वचन काय की चंचलता होगी, जैसा अच्छा बुरा मैं मन वचन काय का व्यवहार या विचार करूंगा, जैसा कर्म करूंगा, जैसी वाणी बोलूंगा, जैसा विचार करूंगा, मैं इनके द्वारा इन्फ्लक्स होने वाला, इनके द्वारा ही मुझे निरंतर आश्रय होगा। और आश्रय दुखकार घनेरे, आश्रय से ही मैं यहां पर दुख पाता हूं, मैं यहां संसार में बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। अब बुद्धिमानी मेरी इसमें है, बुद्धिमान लोग तो इसका निवारण करते हैं, पर मेरी क्या बुद्धिमानी है? बुद्धिमानों की होगी बुद्धिमानी, लेकिन मेरी बुद्धिमानी इसमें है कि मैं अब जरा संभल करके रहूं। मैंने अगर अपना घर बनाया है और उस घर में दोनों दिशाओं में खिड़कियां बनाई हैं, दरवाजे बनाए हैं, तो अब मेरा फर्ज है कि किस तरफ की खिड़की मुझे खोलनी है और किस तरह की खिड़की मुझे नहीं खोलनी, किस तरफ की। क्योंकि मुझे मालूम है कि एक तरफ मेरे घर की जो खिड़की खुलती है, उस तरफ जो है वो कचरा घर है, और एक तरफ जो मेरे घर की खिड़की खुलती है उस तरफ बगीचा है। अब सवाल यह है कि मुझे बगीचे की तरफ की खिड़की ज्यादा खोलनी है या कि कचरा घर की तरफ की खिड़की, खिड़की तो दोनों तरफ बन गई है घर में, या कि दोनों खिड़की बंद करके और आराम से बैठना है। जैसा बन सके वैसा तो विचार यही करना कि खिड़की खोलनी नहीं पड़े, अपने में शांति से रहें, मन वचन काय की क्रिया ही ना करनी पड़े, और जब करनी भी पड़े तो अशुभ की ना करनी पड़े, मैं हमेशा जो है शुभ की ही मन वचन काय की क्रिया करूं। अगर इन्फ्लक्स हो भी तो मेरे जो है अच्छा ही हो, अगर आश्रय हो तो अच्छा हो। वैसे तो आश्रय कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ तो मन वचन काय की क्रिया, मैं अगर नहीं भी चाहूं बुद्धिपूर्वक, तब भी मेरे पूर्व अर्जित संस्कारों की वजह से, जो मैंने पहले आश्रय कर लिया उसके संस्कार की वजह से, वो कोई ना कोई क्रिया तो चलती ही रहती, अबुद्धिपूर्वक चलती रहती है, तो कम से कम उसे तो मैं रोक नहीं सकता, पर जो बुद्धिपूर्वक मेरे कर्मों का आश्रय निरंतर होता है, उसके प्रति मैं सावधान रहूं, उसके प्रति अगर मैं सजग रहूं, तो संभव है कि मैं इस आश्रय की प्रक्रिया से बच सकता हूं। डीकलराइजेशन की प्रोसीजर है, जैसे जैसे ये तो हुआ डिसयूनियन, जो मैंने आपसे चर्चा की इतनी देर तक, आश्रय हमारे साथ आकर के बंध को प्राप्त भी करता है। ध्यान रखें, आश्रय और बंध दोनों एक साथ होते हैं। आश्रय भावना में हम विचार कर रहे हैं कि निरंतर कर्म हमारे साथ आते चले जा रहे हैं, ये मन वचन काय की क्रिया से आते हैं, लेकिन इनको रंग कौन देता है? कषायें रंग देती हैं। मुझे डीकलराइजेशन की प्रोसेस भी करना पड़ेगी। मैं इन दिनों रंगरेज हो गया हूं, मैं अपने कषाय के द्वारा अपनी आत्मा को जिस चाहे रंग में रंगता रहता हूं। अब मुझे रंगरेज पना छोड़ना पड़ेगा, मुझे डीकलराइज करना पड़ेगा, अपनी इन सारी कषायों को हटाना अर्थात डीकलराइज करना, कलरेशन लिशा को जो है कलरेशन कहते हैं, जो हम रंग जाते हैं किसी न किसी काले रंग में रंग जाते हैं, कृष्ण लिशा, हमारे भाव काले हो जाते हैं, हमारे भाव नीले हो जाते हैं, हमारे भाव कबूतर के समान कापोत रंग के हो जाते हैं, फिर हमारे ये तीनों जो है हमारे रंग अच्छे रंग नहीं है। अगर ऐसे रंगों के द्वारा कर्माएंगे तो फिर मुझे और ज्यादा संसार बढ़ेगा, ऐसा विचार करना। मुझे डीकलराइज करना है या कि कलरों को देखना है कि कौन सा रंग मुझे अपने जीवन का देना है, पीला रंग देना है, पद्म रंग देना है, या श्वेत रंग देना है। निरंतर जो व्यक्ति शुक्ल लेशा बनाए रखता है, उस व्यक्ति के लिए कहा है कि कर्मों का आगमन भी होता है पर वो शुभ होता है, और उसकी पोटेंशियलिटी भी बहुत होती है, ड्यूरेशन उसका कम होता है। बहुत थोड़े समय के लिए बहुत अच्छे कर्मों को बांधता है और जल्दी से जो है अपने संसार से पार होने के लिए चला। दोनों तरह का आश्रय, पाप और पुण्य दोनों तरह का आश्रय होता, शुभ और अशुभ का। तो आज वर्तमान में क्योंकि हम शुभ अशुभ दोनों से नहीं बच पाते हैं, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि शुभ करो, वरना आज एक प्रक्रिया चल पड़ी है कि नहीं शुभ अशुभ दोनों बराबर हैं, तो क्या करो फिर, अशुभ भी न छोड़ो और शुभ छोड़ दो और शुद्ध में पहुंचने पाओ, क्या स्थिति बनेगी? बनी रही है, अशुभ छूट नहीं पा रहा है, शुभ छोड़ने की निरंतर चेष्टा है और शुद्ध की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, क्या होगा? अल्टीमेटली अशुभ में गिरेंगे। और यही हमारे साथ आश्रय की प्रक्रिया में हो रहा, हमें समझना चाहिए। हमें छत पर पहुंचना है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, छत पर पहुंचने में सीढ़ियां सहयोगी हैं, सीढ़ियां छत नहीं है, लेकिन मुझे आलंबन तो लेना पड़ेगा। मैं सीढ़ी और एक सीढ़ी पर पैर रखूंगा तो उसी पर खड़े रहूंगा, मुझे दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना है तो पहली वाली छोड़ना पड़ेगी, पर दूसरी पे पहुंचने से पहले पहली वाली छोड़ दूं क्या? जब दूसरी पे पहुंच जाऊंगा तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि छोड़ो पहली वाली, वो तो छूट ही जाएगी। जब मैं अशुभ से बच करके शुभ में पहुंचूंगा तो अशुभ को छोड़ना आवश्यक है। जब शुभ में पहुंच गया और जब मुझे शुद्ध में पहुंचना है तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि शुभ को छोड़ो। आत्मस्थ होने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहना पड़ता कि काय पूजा छोड़ दी कि नहीं छोड़ी, अबे तो छूट ही गई भैया, न पूजा करता हूं, अब मैं अपना आराधक स्वयं बन गया हूं, मैं ही आराध्य हो गया हूं, मैं ही आराधक हो गया हूं। आश्रय को समझना, आश्रय हमें बोध देता है, ऐसा बोध देता है कि हमें क्या करना है। करना तो है यहां पर, लेकिन क्या करना? कुछ नहीं करने के लिए सही स्थिति तो है कुछ नहीं करने की, क्योंकि जितनी मन वचन काय की चेष्टा करूंगा और जितना कषायों का रंग दूंगा मैं, उतना ज्यादा संसार बढ़ने वाला है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये तो अपन पढ़ते हैं, जोन से पूछ लो अबे सब बता देगा। लेकिन मोह नींद के जोर, ये जो मोह की नींद है, ये जो कषायें हैं, ये जो मैं रंगता रहता हूं अपने जीवन को विभिन्न प्रकार के रंगों में, उसको उससे मैं कैसे बचूं? इस रंगने की प्रक्रिया को, डीकलराइज करने की प्रक्रिया को मुझे समझना चाहिए। मैं विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा अपने जीवन को रंगता हूं, विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा अपने जीवन को और अधिक परेशानी में डालता हूं, तब मुझे इन दोनों प्रक्रियाओं से बचने की और तटस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए। तटस्थ नहीं हो पाता हूं। तटस्थ के मायने क्या है? तट पर खड़े हो जाना। नदी में बाढ़ आती है, कितनी मुश्किल पड़ती है, बाढ़ में सब कुछ बह जाता है। इसी तरह से अगर कर्मों की बाढ़ बहुत आएगी तो मेरा पता नहीं लगेगा मेरे आत्मा का। मुझे कर्मों की बाढ़ से संभलना चाहिए, मुझे तट का सहारा लेना पड़ेगा। और वो तट क्या है? राग द्वेष से परे होकर के मुझे आत्मस्थ होना पड़ेगा, वही तटस्थ होने की प्रक्रिया। आश्रय का बोध हमें क्या देता है? आत्मस्थ होना बताता है कि हम अगर जितने ज्यादा आत्मस्थ होंगे, जितने आत्मा के निकट होंगे, उतने ज्यादा हम इस प्रवाह से मुक्त होंगे, वरना ये कर्मों का प्रवाह हमें संसार में बहाता ही चला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह में और छूट जावे तो क्या होता? कहां तक प्रवाह? अनंत सागर तक जाकर के वो प्रवाह रुकता है और उसमें जाकर। इसी तरह तो है, अगर ये कर्मों का प्रवाह बहुत तेजी से मेरे जीवन में चलता रहा, आश्रय बंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रही, ये इन्फ्लक्स होता रहा, मैं अल्टीमेटली कहां जाऊंगा? अनंत दूरियां तय करता अंतहीन संसार में ही भटकता रहूंगा। मुझे एक तट खोज लेना चाहिए। इस आश्रय के बीच में मुझे जिससे आश्रय ना हो वो वैसा तट खोज लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीवन की नाव इस बहाव में डूब जावे। इतनी सावधानी हमें रखना आवश्यक है। आश्रय का बोध जो है वो हमें प्रवाह को एक दिशा देना या कि प्रवाह को रोकना ऐसी सलाह देता है। जब हमें एहसास हो कि कर्मों का तेजी से आश्रय होता है, जैसा मैं करूंगा वैसा ही बहाव होगा बहुत तेज, तब फिर मेरी अपनी कोशिश होनी चाहिए, 24 घंटे कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रवाह को दिशा दें या कि इस प्रवाह को रोक लें। इस प्रवाह को रोकने के लिए आश्रय भावना बोध दे रही है, तभी जाकर के संवर भावना आ पाएगी। अगर आश्रम में ये बोध जागृत नहीं होगा कि ये अभाव, ये भाव मुझे ले जाकर के कहां फेंकेगा, तो आप उसे रोकने का प्रयास क्यों करेंगे?
संवर भावना से पहले आश्रय भावना मुझे ये बोध दे जाए कि ये मेरे जीवन की नाव को डुबाने वाली डुबाने वाला बहाव है, इसलिए मुझे इस बहाव को कंट्रोल में रखना है, इसे एक दिशा देनी है। दोनों किनारों के बीच से ये बहाव बहता है, पाप और पुण्य दोनों किनारे के बीच से। मुझे इन पाप और पुण्य दोनों की स्थिति में कोशिश करनी है कि तटस्थ रह जाऊं। अगर तटस्थ नहीं रह पाता हूं तो कम से कम पुण्य का किनारा तो पकड़ लूं, ताकि मुझे ज्यादा अधिक ना भटकना पड़े। मुझे कोई ना कोई सहारा तो चाहिए पड़ेगा, देव गुरु शास्त्र का मुझे सहारा ले लेना चाहिए। मंगत राय की बारह भावना कल मैं काफी याद करता रहा, वो एकदम याद नहीं आती है। त्यों आश्रव कर्मन को तर्वित जीव प्रदेश गहे नहीं पुद्गल, वो तो ठीक। भावित भाव सुभा सुभ निषिदिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग पंद्रह द्वादश अविरति जानो, पंचरु वीश कषाय मिले सब सत्तावन मानो, मोह भाव की ममता टारे पर पर न तिखोते, सपन करें मोक्ष का जतन निराश्रो ज्ञानी जन होते। मुझे दो लाइन चाहिए थी ये वाली, बाकी तो आपके समझ में सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब समझते कि संतान कौन कौन से कारण हैं उसके। बाकी दो लाइन वो भी बार बार भूल जाती, पहले दो लाइन याद आ रही थी फिर बाकी की भूल रही थी, फिर कल भी रख जी ने मुझे बताया था पूरा पढ़ के लेकिन भूल गया। मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, बस ये अपने को इतना काम कर लेना है। मुझे पकड़ना भी है, मुझे इस भाव के बीच अगर बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं चिपक जाता हूं चीजों से, चीजें मेरे से नहीं चिपकती, मैं चिपक जाता हूं। मैं अपने मन वचन काय को उन रूप कर लेता हूं और फिर अपनी कषायों के द्वारा मैं उन्हें और अधिक प्रबल बना लेता हूं। मुझे इस मोह भाव को छोड़ना है। मम पर परिणति, ये पर पदार्थों के प्रति मेरा मन वचन काय की जितनी दौड़ है वो सब मेरी कम हो जावे। तीनों चीजें दौड़ती, मन दौड़ता है, वाणी दौड़ती है, कर्म के द्वारा भी हम जितने पर पदार्थ हैं उन सब के तरफ दौड़ते हैं, और उनकी तरफ दौड़ने से हमारे जीवन में जो बहाव आता है, जो कर्म आते हैं, वे मुझे इस संसार में और दौड़ में शामिल करते चले जाते हैं। मुझे इस चीज को समझना चाहिए, तटस्थ होकर के रहने में ही आनंद है। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे बताऊं, वैसे तो बहुत मुश्किल है तटस्थ रहना, मैं आपसे कह तो रहा हूं, पर मैं भी कितना तटस्थ रह पाता हूं ये मैं जानता हूं। आपको भी सलाह दे रहा हूं क्योंकि अनुप्रेक्षा सलाह देती, मुझे भी सलाह देती अनुप्रेक्षा, आपको भी सलाह दे। मैं ये भावना करता हूं कि हम सबको एक अच्छी सलाह जो अनुप्रेक्षा देती है कि आप इस भाव के बीच कैसे तटस्थ रह सकते हैं। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता, जो कुछ भी आश्रय हो रहा है वो हमें उदय में भी आता है और फिर वो नए आश्रयों के लिए हमें प्रेरित करता है, लेकिन उन क्षणों में जबकि कोई भी हमारा पुराना संस्कार प्रकट हो, हम कैसे तटस्थ रह सकते हैं, कैसे हम समत्व को रख सकते हैं, ये प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटी सी घटना किसी के जीवन की है कि बहुत वर्षों के बाद उन दोनों दंपत्ति को बेटे उत्पन्न हुए, दो बेटे एक साथ हुए और दोनों बेटे जो है बढ़ना शुरू हुए, बड़े मजबूत बेटे थे, बहुत सुंदर भी दिखाई पड़ते थे और दोनों 20-20 बरस के हो गए। दोनों को बड़ा शौक था पानी में तैरने का, तो एक दिन वो माँ से पूछ करके, पिता तो गए थे दुकान, माँ से पूछ करके गए कि हम नदी में तैरने जाते हैं, लेकिन बहाव के बीच अपने को संभाले रखना ये तो बहुत कठिन है, चाहे वो नदी का बहाव हो चाहे कि कर्मों का बहाव हो। कर्मों का बहाव ऐसा आया और नदी का बहाव और था, वे दोनों तट को छोड़ करके बहे तो फिर कहीं उन्हें तट नहीं मिल पाया और वे उसी में समाप्त हो गए। दोनों की लाश वापिस घर आई है। मां ने एक क्षण के लिए दोनों की लाश देखी और मां की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक जिम्मेदारी यह है कि अभी इन दोनों के पिता आएंगे दुकान से और अगर उन्हें यह मालूम पड़ जाएगा कि दोनों बेटे नहीं रहे तो भोजन नहीं कर पाएंगे, और ये भोजन तो बना रखा, मेरा फर्ज अभी क्या है, भोजन बना रही हूं तो भोजन करवाना मेरा फर्ज है। ये जो घटित हुआ है वो थोड़ी देर बाद भी बताया जा सकता है, जाओ इनको दोनों को उस कमरे में रख दो। बहुत धैर्य का काम है, विवेकानंद की मां थी उसके धैर्य जैसा धैर्य इस मां का है। विवेकानंद विवेकानंद बन गए थे, माँ के सामने मरे थे, तब चिता पर माँ हाथ बांधे खड़ी थी कि मेरा बेटा आम आदमी की तरह नहीं मरा है, मेरा बेटा सत्य को उपलब्ध होके मरा है, इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बेटे को प्रणाम करने के लिए खड़ी हूं, मरते हुए बेटे को मां खड़ी हुई है प्रणाम करने, नहीं तो दूसरी होती तो फूट फूट के रोना शुरू कर देती या कि माथा पीटती अपना। लेकिन ठीक ऐसी ही वो मां थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कर्मों के बहाव के बीच में भी क्या उसको दुख नहीं आया? उसके ऊपर कितना भारी दुख आया है कि कितनी मुश्किल से दो बेटे मिले। पता नहीं सच्ची घटना है या कि कहानी हमने तो पढ़ी थी भैया, सच्ची हो तो आप मान लेना, नहीं हो झूठी हो तो झूठी समझ करके, लेकिन हमें विचार करने के लिए तो वो कह रही है कि नदी के प्रवाह में दोनों ने तट खो दिया, इसी तरह हम कर्म के प्रवाह में अपना आत्मा का तट छोड़ देते हैं, इसलिए हम परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन कर्मों के प्रवाह में वे दोनों अपना तट भूल गए थे, पर मां तट नहीं भूल रही, वो पकड़े हुए उस तट को कि जाओ रखा बाजू के कमरे में, लाश को ढक करके रख दिया, दोनों बेटे 20-20 बरस के। पिता लौटे, कहा खाना बन गया? बन गया। दोनों बेटे नहीं लौटे अभी तक? लौट आएंगे, आप खाना खाएं। बहुत मुश्किल है इस तरह सहज भाव से कहना, और खाना खाना शुरू कर दिया, खाना पूरा हो गया, पूरा होते होते हाथ धो रहे थे, तब कहा कि वो बाजू वालों के यहां से अपने काम की नसेनी अपन लाए थे एक बार, तो वो सुबह से आए थे कि नसेनी हमारी लौटा दो, तो हमने कहा कि ठहर जाओ थोड़ा, हम पूछ लें कि लौटाना है कि नहीं। अरे खिले तुम कैसा करती हो, जो अपनी रसैनी तो है नहीं, अपने को उनने दी थी, अपना काम सट गया, अपन को वापस दे देना चाहिए जिसकी है उसकी। ठीक है दे देंगे, वापस दे देंगे। हमने कहा फिर भी आपसे पूछ लें। बोले नहीं, ऐसे कामों में पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बिल्कुल आवश्यकता नहीं आपसे पूछने की? नहीं कोई आवश्यकता नहीं, दूसरे की है, उसने अपन को दी थी कुछ दिन के लिए, अब अपना फर्ज है कि उसे लौटा दें, या उसने मांगी है तो उसे दे दें। ठीक है फिर तो आओ मेरे साथ, हमें अपनी साधना के बल पर किसी ने 20 साल के लिए दो बेटे दिए थे, आज वो कहने लगा कि ले जाता हूं वापस, तो मैं तुमसे पूछ नहीं पाई और मैंने कहा ले जाओ, मैंने नसैनी भी दे दी और ये दोनों का कपड़ा हटा दिया, दोनों पड़े हुए हैं, लाश पड़ी हुई है। इतना तटस्थ हो पाना कितना कठिन है, लेकिन अगर हमें आश्रव अनुप्रेक्षा का वास्तव में बोध हुआ है तो हम इतने ही तटस्थ हो जाएंगे, हम हर सुख दुख की स्थिति में इतने ही आत्मस्थ होंगे, क्योंकि सुख दुख मेरे आत्मा से जुदे हैं, ये सुख दुख मेरे कर्मों के आश्रव का फल है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं अगर आश्रव रोक दूं तो ये सुख दुख दोनों मेरे से पृथक हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से आश्रव से, आश्रव भावना से बोध पाएं तो हमारे जीवन में ये भावना बहुत बड़े परिवर्तन कर देगी। आप सिर्फ ये कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए ऐसा करके देखिएगा, मुझे मालूम है कि आप 24 आवर्स नहीं कर पाएंगे, एक घंटे भी नहीं कर पाएंगे, एक मिनट भी कर लें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जब मैं एक मिनट कर लेता हूं तो अपनी पीठ खुद थपथपाता हूं शाबाश। एक सेकंड के लिए आपसे कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए भी हम ऐसे तटस्थ हो पाएंगे, आत्मस्थ हो पाएंगे, सुख दुख दोनों मेरे कर्माश्रित हैं, दोनों आते हैं, मैंने जो जैसा किया है वैसे कर्माते हैं, मुझे इस भाव के बीच में सावधान रहना है, अन्यथा ये भाव निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और अगर ऐसा अपन विचार करें, निरंतर विचार करें, तो जरूर अपने जीवन में शांति आएगी, परिवर्तन आएगी, जो अपने जीवन का लक्ष्य है वो अपने को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है सोहो द्रव्य ज्ञान वेखो बंद वेद भान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेखो जीवो के जताए वेखो काहुन सताए वेखो भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख वे सार वेखो ये जिन वाणी
की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जब
नास्ति ना समर्थ, वे समर्थ नहीं है आपकी भक्ति करने में। और आप कैसे हैं कमठ स्मय धूम केतु, कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं। तस् तीर्थेश्वरस्य किल एष अहम् स्तवनम् करिष्ये, ऐसे तीर्थेश्वर अर्थात भगवान पारसनाथ अर्थ यहाँ लेना, तीर्थ के कर्ता भगवान पारसनाथ को मैं यहाँ पर स्तुति कर रहा हूँ। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं जिनकी स्तुति करने के लिए सुरगुरु भी सक्षम नहीं है। मेरी क्या कहना चाहिए, स्थिति तो देखो कि मुझे ऐसे व्यक्ति की स्तुति करना है जिसकी स्तुति बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं कितना छोटा हूं और इतने बड़े की स्तुति, तो पहले से ही कह दिया कि अगर भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। कोई भूल मैं पहले से ही मान के चल रहा हूं, स्तुति करने वाले कह रहे हैं, बाद में तो कहते हैं कि मंत्रहीन धनहीनु क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की, बनी रहे शरण और तो हमसे आउजात कछु नहीं है। जो